अस्सलाम वालेकुम। आज शाम की चाय के साथ मेरा नाम वजात अहमद है और मेरे साथ आज असद अज़हर हुसैन रहेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम असद।
वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल?
मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं?
सब खैरियत, आप सुनाओ?
बिल्कुल ठीक असद। सबसे पहले अगर आपको ठीक लगता है थोड़ा शेड्यूल बता दें, प्रोग्राम का क्या है और क्या करना है।
मेरी तरफ से
गुड। चलिए फिर सबसे पहले हम इंट्रो करेंगे, थोड़ा सा ये बताएंगे हम कौन है, हमारी बैकग्राउंड्स वगैरह क्या हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर, फिर थोड़ा सा सूरत हाल जो पाकिस्तानी बाहर आना चाहते हैं या पाकिस्तानी जो स्पेन में रह रहे हैं, क्योंकि मैं और असद यहाँ बार्सिलोना में काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा एक ओपिनियन देने का।
हाँ, थोड़ा इनपुट देंगे, अपना बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हैं,
वही ना। उसके बाद एंड पे एक छोटा सा सीक्रेट सेगमेंट हमने फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सर शुरू करें, इंटरेस्ट है आप सर, अपना बैकग्राउंड बता दिए, किधर से आए हो क्या?
बस हम्बल बैकग्राउंड सर, फ्रॉम लाहौर टू स्पेन, और इधर बस पढ़ लिख गए थोड़ा बहुत, अल्लाह ने करम किया।
आप किस में, आप क्या क्या पढ़े हुए हो?
जी एरो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जहाज़ों की।
तो इस टाइम आप वर्क वगैरह कह रहे हो?
जी इस वक्त आइबेरिया एयरलाइंस, स्पेन की नेशनल एयरलाइंस, उसके अंदर फिल वर्क।
और कितना अर्सा हो गया स्पेन आए हुए आपको?
स्पेन आए हुए तकरीबन 14 to 15 ईयर्स।
और मैं जैसा आपको पहले बताया जा तो मैं मुझे भी असद के साथ 25 ईयर्स हो गया। मैं पहले साल 9 महीने का था तो यहाँ बार्सिलोना आ गया था। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा जो वर्क है, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, डिफरेंट अस्पताल जो बार्सिलोना है या बार्सिलोना से बाहर, उनमें प्रैक्टिकल या कभी जो मेरे बैकग्राउंड्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पहुँचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किया मेडिकल तक, तो उनमें यहाँ बार्सिलोना में ऑप्शंस है कि आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारी थोड़ी सी छोटी सी इंट्रो होगी। ये बताना ज़रूरी था, मेरा ख्याल है कि मैं और असद कज़न है हम
जी।
और मेरी उर्दू जो है थोड़ी सी इतनी फ्लुएंट नहीं है जितनी असद की, कि मैं जो उर्दू इतनी प्रैक्टिकल कभी ज़्यादा नहीं बोली और असद की ज़्यादा फ्लुएंट है।
साथ हम आपस में भी ज़्यादा स्पेनिश
में, वही ना,
ज़रूरत नहीं पड़ती
गाड़वानों से भी स्पेनिश में उठने बैठने में, जब स्पेनिश में क्रिकेट से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम ये प्रोग्राम उर्दू में करें। तो सबसे पहले असद, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आपका क्या कहना है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स क्रिकेट वगैरह के ऊपर क्या कहना है?
स्टार्टिंग में सबसे पहले तो डिमाइस ऑफ अरशद शरीफ, इतना बेहतरीन एक हमारा एंकर जो वफात पा चुका है, और अजीब व गरीब सूरत हाल के अंदर जो कीनिया जाना, उसका मुल्क छोड़ के जाना, और उसके लिए अपनी ही मुल्क की सरजमीन एक मुश्किल हो गया था उसके लिए इधर रहना। तो उसके लिए बस यही है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे, और आगे जो उसकी फैमिली है, छोटे बच्चे हो गए और साथ उसकी जोजा, जो अब भी बेचारे पहले ही घर का मेरे ख्याल से लास्ट वो फद रह गया था, अम्मी भी उसकी पहले अपने हस्बैंड को दफना चुकी है, फिर एक और भाई को दफना चुकी
है,
वो भी शहादत में ऐसे ही चला गया। चलो पर एक है कि अपना मुकाम वो बंदा बना गया, कम से कम लोगों के सामने डट के खड़ा रहा, जो आपकी समझ लो जो जो मुल्क में डिसीजन करते हैं उनके सामने वो डटा रहा कि मैंने अपने उससे नहीं हिलना, अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही हमें सिखाता है ये बंदा। और अब देखो यही कहते हैं कि क्या नाम है, जिंदों के अंदर एक लाश नहीं बल्कि लाशों के अंदर एक जिंदा बंदा पाकिस्तान, जब उसके जस्ते खाकी आया तो यही समझेंगे हम,
और अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे सर। और हमने सोचा था कि एक छोटा सा इस मौके पे एक तरीके का शेर हो जाए उनके लिए, तो
पेश कर, आप पेश करोगे?
पेश कर दीजिए
जी, ये छोटा सा ट्रिब्यूट है, ये मेरी अपनी शायरी है सर, और बस शायरी इस किस्म की है कि जमीन में आसमां देखा, बदलता ये जहां देखा, कभी जो बोलते थे खूब उन्हें भी बेजुबां देखा।
वाह ज़बरदस्त,
बस एक बंदा जो इतना बोलता था, इतना वोकल था इस सब के बारे में, वो देखो अब बेजुबान एक चला गया इस दुनिया से।
हमने एक तरीके का सोचा था कि ये प्रोग्राम भी थोड़ा सा डेडिकेट कर दें अरशद शरीफ को, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है और हमको लगा कि एक तरीके का फ़र्ज ही कह लीजिए कि डेडिकेट करना हमारा था इनको प्रोग्राम। और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, असद आपको क्या लगता है जो इस टाइम पाकिस्तान सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल पीटीआई की तरफ से?
पॉलिटिकल सूरत हाल बस यही है कि अब इमरान खान साहब निकले हुए हैं एक लॉन्ग मार्च पे, जो देखो अब क्या बनता है। इस वक्त सारे कार्ड्स उनके अगेंस्ट हैं, जो मुल्क के आपके इस्टेब्लिशमेंट है वो खुल के पीछे उनके लगी हुई है कि کہ ان کو اب آگے پاور میں مشکل یہ آنے دیں واپس. پر یہ ہے کہ لوگ بھی اس وقت فل اپنے زوروں پہ ہیں کہ ایک آزادی مارچ ٹائپ کر رہے ہیں, وہ اپنے روٹ سے نکلے ہیں. میرے خیال سے اس وقت لاہور سے نکلنا ہے. کل بھی ایک اینکر بھی اس صاحب میں وفات پا چکے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہوگا.
جی محل صدف ان کا نام تھا جو وفات پا چکی ہیں. اور آج بھی میں نے عمران خان صبح کے وقت ان کے گھر بھی کیے ہوئے تھے, ان کے امدادی مدد بھی کیا. اور میرا خیال ہے جو آج تھا فوت ہو رہا ہے, اشر شریف کہہ لیجیے, صدف کہہ لیجیے, اس پہ تھوڑی سی پولیٹکس بن رہی ہے. اشر شریف کی ٹھیک ہے, ہماری یہ تھوڑی سی پولیٹکس پہ بنتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ, لیکن صدف پہ آپ کو کیا لگتا ہے, پولیٹکس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
صدف کا ایک ایکسیڈنٹل سا بات ہوئی ہے کہ وہ ایک کنٹینر سے دوسرے کنٹینر پہ جا رہی تھی. اس کی بھی اب اپنی یہ چیز ہے نا کہ دیکھ کے, پر جو جب بندے کی آئی ہو بندہ پتا نہیں.
جلسے میں کافی لوگ میں نے دیکھے ہیں, کافی عوام جا رہی ہے پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ. اور میرا یہ آپ سے پوچھنا تھا سر, آپ کا پولیٹکس کے,
میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہ, میں
کسی تعلق نہیں ایک نہیں کہا. آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو اس ٹائم, یا کون سا
سپورٹ؟ وہی بندہ سپورٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرو جو جو کچھ کر کے کسی نے کچھ دکھایا ہو آپ کو. آپ 30-35 سال سے انہیں لوگوں کو کیری کر رہے ہو, زرداری, عمران خان. عمران خان تو نیو ابھی آیا, زرداری ہو گیا, نواز شریف, شہباز شریف, ان لوگوں کو کیری کر رہے ہو. اور یہی لوگ وہی آ کے دوبارہ کو کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان دیں گے, آپ لوگ پھر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلے ہوئے تو چلتے رہو یار. پر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نیو, سم تھنگ نیو چاہیے لوگوں کے اندر. کہ ہم لوگ ہر چیز کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے, جب تک ہمیں افیکٹ نہیں ہوتا اپنی لائف میں ہم اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. چینج از نیڈڈ.
اس کا مطلب پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ووٹ اتنی سستی بھیج دو, نہیں تو کہ ووٹ کو تھوڑی سی ویلیو دو, یا ووٹ کو ایک طریقے کا اس جگہ لے کے جاؤ.
نہیں آپ یہ بھی نہ کہہ دو ووٹ کو عزت دو, مریم نواز کا
ڈھول لیگ والا ڈائلاگ شروع ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام
ہے, ووٹ کو عزت نہ دو, نوٹ کو عزت دو, سارا سسٹم
نہیں. لیکن جو عوام ہے ان کو یہ ایک طریقے کا ذہن میں ڈالا عمران خان نے کہ جو آپ کی ووٹ ہے وہ اتنی سستی نہ بیچو, نہیں تو مجھے نہ دو, لیکن اس بندے کو دو جس کو آپ کو لگتا ہے دینا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ, میں نے پاکستان فیملی میں بھی یہ دیکھا ہے, کافی لوگ ہیں کہ نہیں عمران خان اچھی کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. ووٹ جس کو لوگ نہیں, ووٹ نون لیگ کی ہے, وہ کیوں بس مری وہاں بات ہوئی ہے. یہ ووٹ ایک طریقے کی نون لیگ کا کیوں دینے اگر آپ کو کوئی اور اچھا لگ رہا ہے کام کرتے ہوئے.
چکر ہے لوگوں کے پاس وہ آپشن بھی ہے نہیں ہے. آپ کے پاس جماعت اسلامی کی ایک آپشن ہے, پر وہ جماعت اسلامی چکر ہے کہ ان کے پاس کتنا کوئی آپ کو لگتا ہے پلان ان کے پاس ہوگا کہ آپ کو ملک کو آگے چینج کر سکے. عمران خان کے پاس 2-3 ایئرس تھے, اس میں مسئلہ ہے کہ اس کو اپنی پبلسٹی صحیح نہیں کر سکا. جو ان سے اچھے وقت کام ہوئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی, اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا. اب شہباز شریف اگر جتنے بھی سال رہا وہ اپنی پبلسٹی اچھی کرتا رہا, میٹرو ٹرین بنائی, یہ چیز بنائی, کافی چیزوں کا ہمیں جن کا فائدہ نہیں ہے میننگ کے, پر وہ ہے کہ اس کو لوگوں کو نظر آتا ہے جا کے ووٹ ڈال آتے
ہیں.
جس طریقے سے اپنے وہ کرتے ہو نا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, لوگوں کو پہنچے لوگ کے واہ بھائی واہ میٹرو بن گئی جی, میٹرو ٹرین بن گئی, جا کے ہم نیو لاہور کو بنا دیا, کافی اچھے کام بھی ہیں. پر چکر ہے کہ اس سے جو نچلا طبقہ اس کو فائدہ ہو نہیں رہا. مسئلہ ہے کہ نیچے والوں کو فائدہ ہو نہیں رہا. میٹرو ٹرین چلو مڈل کلاس پہ فائدہ ہے,
وہ بھی اب اتنا فائدہ نہیں, کیونکہ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اس ٹائم ایک رسک میں ہے میرا خیال ہے. جس طرح
مڈل کلاس بھی تقریباً ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے, یا رہ جانی ہے لوور کلاس, یا رہ جانی ہے آپ کی رچ کلاس, تو رچ سے رچ ہوتی جا رہی ہے اربوں کروڑوں روپے میں. اور پھر وہی پیسہ کدھر سے ملتا ہے آپ کو, جا کے آپ کو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ملے گا, یا پھر ہمارے ادھر اسپین میں 3-4 بلڈنگ ہے جو,
اور انگلینڈ میں ایک دفعہ محل ہے
ٹو ٹائمز انگلینڈ میں, تو یار ایون فیلڈ اپارٹمنٹس.
نہیں لیکن میں وہاں جا کے
سابق وزیر اعظم,
نہیں میں آپ کو اصلی اسٹوری بتاتا ہوں. میں وہاں میں ایک بندے نے کہا جس کے ساتھ میں گیا تھا کہ یہ نواز شریف کی بلڈنگ ہے, دیکھنے میں اتنی بڑی بلڈنگ ملے گا. پھر بندہ سوچتا تو ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کدھر سے سارا کچھ ہے. پھر
یہ وہی ہے یار, اپنی آپ یہ ویسے ہی ہے جو ایک آپ کے سنتے ہو نا کہ ماں کے لیے آپ بیمار ماں کے لیے آپ کو دوائی کے پیسے دیے جائیں اور اس دوائی کے جا کے آپ باہر سے برگر کھا لو, وہی سسٹم ہے ہماری. ہمارا ملک ایک بےچارا غریب ماں کی طرح ہے, غریب بےچارا, اس کو ٹانکے ٹونکے لگے ہوئے ہیں بےچارے کو, اس کی مرم پٹی کے جو پیسے ہیں وہ آپ جا کے اس کے آپ باہر جا کے برگر پیزے کھاؤ گے.
برگر پیزے کھاؤ گے بھائی, نہیں اچھی انالوجی نکالی آپ نے اس پہ. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ پاکستان جو میرا جس دفعہ آخری ٹائم گیا تھا کرونا سے پہلے پاکستان, اس ٹائم عمران خان کی حکومت تھی اگر میں غلط نہیں ہوں, اور مجھے जाते हुए डिफरेंट सी फील हुई है। मेरे ख्याल आप गए हो पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी।
मैं गया था पर जाके पता नहीं चला मैं जाके बीमार हो गया था। हमारे सीरियस का सिस्टम ऐसा है।
वही ना, उस टाइम गए थे पाकिस्तान फैमिली उस
चक्कर में, वो आपको उस चीज को सोचने का टाइम।
लेकिन मैं इस दफा हो सकता है मैं गया था एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद वाले एयरपोर्ट पे गया था, और जाते वक्त मुझे एक ऐसी फील आई थी कि थोड़ा सी कोई बदली है। और ये भी है कि वादा कि वो नहीं जैसे आप पुराने एयरपोर्ट पे जाते थे या पुरानी तरीके से जाते थे। पहले जाते भी आपको बाहर से देखते तो पैसे मांगने शुरू कर देते थे। अब मैं इस दफ़ा जब लैंड किया हूँ मुझे कोई एक तरीके का एयरपोर्ट पे कोई भिखारी, चलो ठीक है एक दो वो बात ठीक है, तो अब अमूमन आती है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई जो पहले आती थी कि भिखारी इतने या मांगने वाले हैं, उस टाइप की नज़र नहीं आई जिस टाइप के पिछले हुकूमतों में थे। लेकिन इस दफ़ा जो आखिरी दफ़ा गया उस टाइम बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान जाके। और ये भी मुझे आया कि जो रिश्वत एक तरीके की लेते थे, गाड़ी वाले हो गए ये आपके दफ्तर में जाओ ठीक है लेते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं रही थी, एक डर में डर पैदा हो रहा था। और मुझे लगता है वो थोड़ा जो इमरान खान ने 4-5-3 सालों में डर पैदा कर दिए और उनको एक शौर दे दिया, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा काम हुआ है।
जी टूरिज्म पे काम हुआ है भाई, जो आप चले जाओ गिलगित चले जाओ आप, मैंने कहा मरी का इंसिडेंट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, पर जो आगे पीछे आपका यूट्यूबर बाहर से ब्लॉगर आ रहे हैं उन पे बहुत काम हुआ है। पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू विजिट,
और कोरोना के कोरोना
कोरोना बहुत ज़बरदस्त, वही चीज़ ना कोरोना बहुत अच्छा हैंडल हो गया। पाकिस्तान नंबर 2 के नंबर 3 था बेस्ट हैंडलिंग कंट्रीज में, पर मसला ये था कि वही चीज़ आपको नज़र नहीं आता, आपको चीज़ें नज़र आती हैं, बड़ा एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो होगी,
मेट्रो
आपको फ्री रोटी होगी 2 रुपये की, वही चीज़ें बाद में मैं जिस वक्त था उस वक्त 2 रुपये की रोटी वाला सिस्टम था, वो किसी को 2 रुपये की मिलती भी नहीं थी। पर चक्कर है कि आपको पब्लिसाइज करना आना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप उस चीज़ पे प्लान को एग्जीक्यूट करो एंड तक। आपके 3 साल रहते थे, अगर आपने पब्लिसाइज किया होता लोग आपके मे भी जिन जिन्होंने वोट दिया था उनके घर जाकर उनको पकड़ के मारते कि ये आपके खिलाफ क्यों वोट दिए।
लेकिन फिर भी एक तरीके से इमरान खान मेरे ख्याल जिस तरह वो सोच रहा है या देख रहा है फ्यूचर पाकिस्तान का, बहुत मुझे जिस तरह मैं उसकी फॉलोइंग कर रहा हूँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ बनेगा इसका।
चक्कर है कि बनना चाहिए वो ना हो कोई भी हो यार, कोई भी न्यू विजन लेके आए। हम स्पेन इधर रह रहे हैं, इधर भी एक
बंदा तो मुझे लगता है एक बंदा तो होएगा जिसने एक तरीके का सारा रूल तोड़ के शुरू करना है नए से, और मुझे लगता है वो इमरान खान है, क्योंकि वो जिस तरह देख रहे पॉलिटिक्स को जिस तरह वो एक तरीके के नई चीज़ें लेके आना चाहता है। मेरा ख्याल है जो पुराने पॉलिटिकल है वो 90s के एरा में खेल रहे हैं, जैसे कहने का मतलब जैसे
हमारी सब चीज़ें 90s की हैं। अभी भी आप न्यू चीज़ें आपके पास नया फ़ोन ही होता है जो हर बंदा लेता है, आप मैंटेलिटी आपकी 90s की है फिलहाल। पर यही है कि एक नया चेंज आपको चाहिए, चेंज इन अ सेंस के नई पार्टी हो, पर पार्टी चलो पुरानी भी हो पर उसके अंदर नई सोच हो। चाहे नून लीग से कोई मसला नहीं है, नून लीग में अच्छे पॉलिटिशियन हैं बहुत अच्छे हैं, पर वो भी आए ना अपने लोगों को कि आप ये जो कर रहे हो इसके खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठाता। आपको बस है कि एक मरूसी सियासत आपकी चल रही है जी, नवाज के बाद आएगा शबाज के बाद हमजा फिर मरियम के बाद पता नहीं कौन, और फिर उधर से हमारे अजीज दोस्त एक जरदारी सब भारी, वो सबसे भारी हमारी वहां भी बड़ा उन बेचारों के ऊपर
मुझे लगता है इमरान खान का आयर है ना ये तो हम जलसा निकल रहे हैं, ये उस टाइम का आयर जिस हमारे नाना नाना बू या हमारे बुजुर्ग निकले थे भुट्टो के पीछे। लेकिन भुट्टो की ये है कि भुट्टो भी बहुत अच्छा खेल गया था, लेकिन जो एंड वाला मसला था ना उसने एक तरीके का वो
भुट्टो का जो मसला बांग्लादेश वाला हुआ था ना
वो उसने सारा कुछ वहाँ, लेकिन मुझे लग रहा था इस टाइम वो एक तरीके का वो एक मोमेंटम बना था ना हमारे हमारे बूढ़ों के लिए, वो हमारे लिए
वो उस वक्त तो कहते थे कि भुट्टो किसी क्या नाम है पत्थर को खड़ा कर दे किसी क्या नाम है इलाके में तो वो जीत जाएगा, क्योंकि उस वक्त भुट्टो ही भुट्टो था, कैंडिडेट को कोई नहीं देखता इस वक्त ही बहुत ज्यादा, इमरान खान खुद ही कितनी जगह खड़ा हुआ है। पर मसला इस वक्त ये है कि हमारे लोग एक कंफर्ट जोन हमारा
इमरान खान मेरे ख्याल से तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि अगर आपका बेटा है जरदारी का बेटा है तो वो आप अगली वोट ना जीत सके मेरिट पे ना हो, अगर वो बहुत अच्छा काम करे तो फिर जीतना चाहिए। जैसे वो पंजाब का गवर्नर लगाया था क्या नाम था उसका
चौधरी सरवर
नहीं हमजा का, हमजा छोटा बेटा उनका नवाज शरीफ का
पक्का मुझे
शिवा शरीफ है, सॉरी शिवा शरीफ का छोटे बेटे का
हमजा शरीफ नहीं था, हमजा शरीफ
लेकिन एक क्रिकेटर है, सॉरी उधर का पंजाब का क्रिकेटर, वो भी
वो मारूसी पर के चक्कर है कि वजीर आला उसको इसलिए लगाया था क्योंकि वो पहले से बहुत कंट्रोल कर रहा था, क्या नाम है, पहले से पंजाब का सिस्टम उसके अंदर था, डीसीज हो गए सारे उसके अंदर था।
लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में कोई बंदा ऊपर पावर में आ जाए उसका बस यही दिल होता है कि सारे मेरे नीचे काम करें और मैं बस एक बड़ी सी गाड़ी में निकलूँ, एक प्राडो में निकलूँ वहाँ से और बस मेरा ही राज है। और जो इमरान खान एक तरीके का मुझे जो सिखा सके जो मैं सीख सका उससे ये है कि जितने मर्जी बड़े हो जाओ एक तरीके की अपने दिल में ना वो ना भूलो, जो आपकी आपकी बैकग्राउंड ना भूलो कैसे आए हो। और उसकी ये अच्छी बात है कि वो
पर उसकी हम्बल बैकग्राउंड भी कोई नहीं है, वो भी प्रिविलेज बैकग्राउंड में पैदा हुआ
वो तो ठीक है, लेकिन वो एक तरीके का रिश्ता मैंने जो देखा है, अब उसको प्रोपेगेंडा कह लो जो भी कह लो, तो मुझे अच्छा लगा उसका कि वो बड़े बंदों के साथ बैठे खाना खा लेगा और वो बिल्कुल गली के बंदों के साथ बैठे खा लेगा। ये मेरे आज तक पॉलिटिक्स में ही देखा, मुझे तो भुट्टो का है याद है क्योंकि मसले में है नहीं था, लेकिन जो जो था जो इमरान खान का मैंने देखा है या जो किया उसने काम ज़्यादा अपने तरीके के अपने बंदों के लिए किया है, अपने वोटर के लिए, और वो मुझे अच्छा लगा है। और जो सबसे अच्छी मुझे इसके बाद लेके मैं मेडिकल स्टूडेंट होता हूँ, हेल्थ कार्ड जो उसने
स्पेन का एक सिस्टम है हेल्थ का जो मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में,
लेकिन अमेरिका ऐसा मुल्क नहीं है ये।
नहीं, अमेरिकन सुपर पावर बस इसी वजह से है कि वो मिलिट्री के तौर पे मिलिट्री जो उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल करती है, पर जो हेल्थ का मसला उधर बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, चलो ये अगर आ जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग।
नहीं आई एम हैप्पी उन्होंने ओपन कर दिया कार्ड जब का नया सीएम आया पंजाब का, पीटीआई का तो नहीं है वो,
नहीं कार लीक है पर चलो
है तो पीटीआई का,
पीटीआई का नहीं है वो बहुत बड़ी चीज है वो भी।
तो असद इसके अलावा जे आप पॉलिटिकल हीरो हैं इमरान खान, तो क्रिकेट के बारे में बात ना करें थोड़ा सा बुरा लगता है,
क्रिकेट के बारे में क्या बात करें यार, क्या जख्म आप खरीदने हैं, हम इतने ज्यादा एक्साइटेड सुबह सुबह 6:00-5:00 उठ के मैं मैच देख रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल फनाटिक हूँ इस चीज का, पर देखो अब तुम्हारे चांस बहुत ही ब्लीक हो चुके हैं,
मुश्किल लग रहा है।
कल 3 मैच हुए हैं, पाकिस्तान का पहला मैच था क्या नाम है नेदरलैंड के साथ, उससे पहले बांग्लादेश जिम्बाब्वे और उसके बाद था साउथ अफ्रीका और इंडिया का। पहला मैच बंगाली भाइयों ने हमारी मदद कर दी, वो जिम्बाब्वे से जीत गए, और उसके बाद पाकिस्तान नेदरलैंड से जीत गया, पर ऐसे मार मार के उनको डर लगा हुआ था कि चाहे ये ना हो जाए, इनसे भी आ रहे तो जाके जूतियां बहुत पड़नी कहना तुमने नेदरलैंड जिम्बाब्वे दोनों,
लेकिन एक तरीके का पाकिस्तान टीम जब का मैंने वो संभाली है यही देख रहा हूँ कि
वर्ल्ड कप आपके आया था
92 में आया था, उसके
नहीं 2009 में या 10 में हम T20 जीते यूनुस खान के, आपको मैं भी याद ना हो T20 वर्ल्ड कप एक हम जीते हुए हैं, जो एक पहला तो हम हार गए थे, पहला जो हुआ 2007 में इंडिया से हार गए, 2007 में 8 में हुआ था वो इंडिया से हार के, दूसरा हम जीते हैं, तीसरा क्या नाम है आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, बस चक्कर है कि बॉलिंग तो हमारी एक क्लास है, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग, आपके पास इतना पेसर है, कल हारिस रऊफ ने वो नेदरलैंड के प्लेयर की आंख फोड़ दी उसको,
हमें सुबह पोस्ट देखे इंस्टाग्राम
पे, उसको सारा गुस्सा उस पे बेचारे पे निकाला, वो भी कहा भाई माफ करो, चक्कर है कि अब आपके चांसेस बहुत ब्लीक है,
नहीं यार मुश्किल जिस तरह
आपने इंडिया से आपने इतना जबरदस्त मुकाबला किया, उनको आपने घुटनों पे खड़ा कर दिया अपने, पर आप देखो आपके चांसेस कैसे निकलते हैं, सिनेरियो पहले आपके लिए इजी था, पाकिस्तान जीते अपना नेदरलैंड के साथ मैच, बाकी बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से जीते मैच, और साउथ अफ्रीका इंडिया से हार जाता आगे थे हम, आप साउथ अफ्रीका इंडिया से हारा नहीं, इंडिया भाईजान हार गए हैं, अब कॉन्स्पिरेसी निकल रही है कि इंडिया में भी जान के आ रहा हूँ, फिर तब इन्होंने यही किया था, अब हम क्या कह सकते हैं यार, कि आप मंगते बनोगे आप किसी के सामने मांगो कि उसकी वजह जीत जाए, वो तो फिर उनकी अपनी डिपेंड करता है कैसी परफॉर्मेंस करें, अब आपके पास एक ही चांस है के बैठ के मसल्ले पे आप दुआएं करेंगे बारिश हो जाए इंडिया के मैचेस में, और इंडिया
तो नहीं होना चाहिए यार वर्ल्ड कप,
नहीं 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 होना चाहिए,
मसल्ला करके उस पारे उठा लेते हैं,
खत्म पड़ो घर जाके,
हर वर्ल्ड कप भी भाई साहब एक तरीके का ऐसे ही सिनेरियो पैदा होता है,
आपकी टीम कंसिस्टेंट नहीं है यार, आपकी टीम अगर बैटिंग चल रही है, बॉलिंग चल रही है, बॉलिंग चल रही है, फील्डिंग नहीं चल रही,
फिर बात पहले वाली आती है जो करप्शन किया, फिर इसमें करप्शन
हाँ यार करप्शन हर जगह है, करप्शन हर जगह। आप कहते हो पर्ची पर्ची प्लेयर आ जाते हैं, मेरे भाई का बेटा है इसको भी चेक कर लो, भाई का बेटा मैं भी टेप बॉल क्रिकेट में अच्छा खेलता हूँ, पर हार्ड बॉल क्रिकेट इज अदर वर्ल्ड।
नहीं नहीं ठीक है, लेकिन वही बात करने में तो जो इंडिया के साथ मैच हुआ है आखिरी दो
वो मैच पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला यार,
लेकिन अंपायर की जो गलती थी मेरा ख्याल है, मैं मैच देख रहा था, मैंने कहा यार ये नो बॉल कैसे है,
नो बॉल वेस्ट वेस्ट लाइन से ऊपर जो होती है नो बॉल होती है, वो स्पिनर का स्पिनर की बॉल डिप करती है, स्पिनर की बॉल डिप करके नीचे आ रही थी, पर उसने जज ऐसे किया जैसे बॉल हो फास्ट बॉलर की, फास्ट बॉलर की बॉल की तरह उसने किया, क्योंकि फास्ट बॉलर की डिप नहीं करती सीधा जाती है, तो उसने उस तरीके से उसको जज किया इसलिए नो बॉल दे दिया। पर देखो यार वो अब मैच हारे भी होते हैं, जिम्बाब्वे से जीत जाओ यार, जिम्बाब्वे देखो यार कोई इतनी कोई वर्ल्ड क्लास, चलो अच्छी परफॉर्मेंस पर वर्ल्ड क्लास टीम,
मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम एक वक्त तक जब जीत रही है लेकिन जब एक मैच हारती है एकदम अपना कॉन्फिडेंस
नहीं, पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान ने अगर इंडिया से मैच जीता होता ना ये बिल्कुल थ्रू थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी बैठ के पैंटी लगानी थी और इनको भी जिम्बाब्वे को भी, ये एक मैच है ना मोरल इनका डाउन हो गया क्योंकि यार इतनी क्लोज आ गया,
नहीं होना चाहिए ना एक मैच,
नहीं होना चाहिए, पर आपका चक्कर है कि आपकी मेंटालिटी पूरे मुल्क की एक जैसी है, क्या कर सकते
हैं, ये मसला है। और असद आप थोड़ी सी अगर आप ये शुरू किया पाकिस्तान के ऊपर बात की है, तो आप और मैं यहाँ बार्सिलोना में रह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ बेहतर रहन वगैरह, क्या यहाँ बेहतर है या पाकिस्तान बेहतर है?
बस यार आप जब पाकिस्तान, हम ये आपने टॉपिक निकाला है तो सबसे पहले तो क्या नाम है, हम इधर बार्सिलोना रहने हैं, कतालुनिया एक सूबा है बार्सिलोना उसके अंदर है सिटी,
स्पेन का सूबा
और ये साथ समझ लो जैसे इधर कम्युनिटी ऑटोनोमा कहते हैं पर स्पेन का एक सूबा, उधर हम देखो आप भी रह रहे हो, आपको तो मेरे से बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, मुझे आए तकरीबन ये समझ लो कि जैसे होश संभाली है तब से इधर ही रह रहे हैं। उस टाइम भी मेरे ख्याल से 4th या 5th पास करके मैं इधर आ गया था
पाकिस्तान से, लेकिन आपने आगे हमने ज़्यादा अच्छी रिकवरी की थी कतालान की,
स्पेनिश और इसकी रिकवरी, बस क्या नाम है, अगर आप इस एज में आज हो ना 10 से लेके 20 के दरमियान 2-3 साल भी आपको मिल जाए तो आप कर ले, तो उसके बाद आओगे तो फिर आपको मसला होगा।
हाँ ये बड़ा मसला है, ये जो बहुत ज़्यादा बाप, ये ठीक है कि बच्चे का वीज़ा लग गया लेट लगा है 30s में 50s में लग गया, लेकिन मसला ये है कि आप बच्चे का 50 में लेके आ जाओगे यहाँ बार्सिलोना, और ये काफ़ी केस मैंने देखे हैं हमारे, फिर आपके स्कूल में भी काफ़ी बच्चे थे
नहीं, वो अगर आप
क्वार्टो देशों में आए थे वो
15-20
तो बच्चे उस पर उम्मीद रखो कि वो जुबान सीख ले या वो कुछ पढ़ सके, तो यहाँ एक तरीके का उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा उससे
स्पेन, अगर आप समझते हो कि अगर बच्चा इंग्लिश अच्छी बोलता है इधर आगे कर लेगा कुछ नहीं, स्पेन आपका ऐसा मुल्क है कि इंग्लिश का इतना रुझाना बाहर है, पहले चक्कर है कि स्पेन पहले एज अ सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच ज़्यादा बोलते रहेगा, फ्रेंच का बहुत ज़्यादा एक आपको इन्फ्लुएंस नज़र आएगा,
लेकिन इंग्लिश भी इतनी वो ना
इंग्लिश इन्होंने अब स्टार्ट किया कि उनको पता है कि पीछे रह जाएंगे दुनिया से, और इंग्लिश भी इनकी जो ट्रांसलेशन वगैरह जो चक्कर है कि इंग्लिश मिलती जुलती है स्पेनिश से, पर चक्कर है जो
इंडिया आप किसी भी स्पेनिश से यहाँ के पूछ लोगे इंग्लिश का कोई वर्ड वो आपको सबसे पहले कहेगा मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है ना से आप लड़े इंग्लिश, ये मसला आगे पड़ता है कि आप यहाँ के काफ़ी मैं जब अपने अस्पताल वगैरह काम करता हूँ तो ये काफ़ी माँ बाप मेरे से पूछते हैं आपने क्या पढ़ा था, पूछते मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ के वहाँ मेडिकल पढ़ के, और एक सोच है कि पाकिस्तान से मेडिकल पढ़ के यहाँ आ जाओगे या इंजीनियरिंग करके यहाँ आ जाओगे तो उसका तो आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आप ये करके दुबई की तरफ निकल जाओ या कोई एशिया के मुल्क की तरफ निकल जाओ।
पहले तो सबसे अगर आप मुत्तफिक हो मेरे साथ तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप अगर आओ किस तरीके से
लीगल तरीके से सबसे पहले
इधर आने का तरीका कि आप सब बैठे हुए पाकिस्तान में अगर हमें सुन रहे हो तो आप सोचो कि यार यूरोप चले जाइए, यूरोप दरख्तों के ऊपर मनी लगी हुई है उतारे, सबसे पहले स्टार्टिंग है कि आप लीगल तरीका बहुत मुश्किल है जो
काफी तरीके से आ सकते हैं
पर उसके अंदर चीजें हैं ना, या आपको जॉब का या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या आपकी स्टडीज उस किस्म की हो कि आपको स्पेनिश खुद कहेगा यार वाह, अगर आप पाकिस्तान में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, आप अगर 2-3 लाख महीने का कमा रहे हो फिर फिर आप लालच कर रहे हो।
दो तीन लाख में नहीं, एक लाख प्यार
पाकिस्तान का, एक लाख यहाँ का बहुत बहुत सुकून है, क्योंकि यहाँ पे आप जो किराया दे रहे हो ना पे कर रहे हो वो तकरीबन एक लाख,
मतलब एक नहीं इतना ज्यादा नहीं,
तकरीबन इतना
पचास कर ले,
पचास साठ हजार कर लो।
और फिर ये भी सोचते हैं यार है ना, ये नहीं है कि खाली किराया या फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, खाना पीना, ऐसे असद कह रहा है और भी चीजें यार, ऐसे
आप कोई थोड़ा
गाड़ी रखना चाहते हो।
हाँ, अगर आप दो चार दिन अगर कहो जो फैमिली के रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे,
कोविड के बाद मैंने खाना मुश्किल है कोई आप एक तरीके का रेस्टोरेंट निकल सको, क्योंकि जो पे थी
वो जी,
वो रिड्यूस वही पे आपको मिल रही है। अगर 180 मिले तो 180 मिलेगी आपको, लेकिन मसला ये है कि 180 में है ना, आपके अगर जो आप 10 रुपए की चीज लेते थे वह 20 की हो गई है। और मसला
ये जो यूक्रेन की सारा सिस्टम चल रहा है,
यहाँ ये काफी मसला यूक्रेन
में नहीं, मेन चीज जो आप लोगों को पता चले कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो मेन इशू है कि एजेंटों का जो इशू है ना,
ये
वो आपको क्या करेंगे आपसे, मीनिंग आप किधर गए हो तो कहते जी भाई आपको पहुंचा देंगे। पहुंचाने का तरीका कि आप उधर से निकलोगे पाकिस्तान से, आपको एक बिठाएंगे, ट्रक हो गया आपकी, लारी होगी आपको,
पहले तो
ईरान का, ईरान का जरिया, या अफगानिस्तान में तो आप घुसते नहीं, अफगानिस्तान में हमारे दोस्त बैठे हुए वो कहेंगे तुम किधर चला, तो पकड़ लेंगे। तो चक्कर है कि ईरान के थ्रू आप तुर्की आओगे, तुर्की आपको बाहर निकालेंगे, आप कहोगे यूरोप पहुंच गए, तुर्की भी यूरोप तकरीबन लगता है आपको, कपड़े छपड़े वैसे नजर आएंगे लोग वहां, जिसकी जिसकी कोई हलीमा सुल्तान नहीं आपको मिली ना अर्तुगरुल मिलना, आप वहां से निकलोगे तो फिर आपको कोई ना कोई, या जहाज का तरीका तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास वीजा
नहीं। मेरा कहना यही ऐसा जो कह रहा
है, नहीं मैं जो कहना चाह रहा था, चक्कर है कि फिर आप ज्यादातर तरीके मर सकते हो, आप जिस लारी लूरी में आ रहे हो उसके अंदर सर्वाइव करने का भी कोई चक्कर नहीं, अगर आपको पकड़ ले तो सीधा जेल।
मैंने सुना है पाकिस्तान से 50-50 लाख या 20 लाख रुपया लेके यहाँ तक, बंदा कहता है यार ये इतने का पाकिस्तान बिजनेस अच्छा खोल सकते हो। मुझे पता है पाकिस्तान के इस टाइम हालात नहीं है बिजनेस वाले, लेकिन जो आप इतने पैसे लगा रहे हो किसी ना किसी तरीके से निकले हैं ना, वही आप पाकिस्तान में बैठ के आधे पैसे में आप उसका बिजनेस शुरू
कर सकते हो। पाकिस्तान में आप देखो, पाकिस्तान में बिजनेस बहुत है, पाकिस्तान में कई लोग हैं जो सुबह पहनते हैं कलफ वाला जोड़ा काला, एक अपनी गाड़ी निकाली करोला, महीने का तकरीबन 3-4 लाख सुकून से, दिन का 5-6 हजार निकाल लेते सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। इस बंदे को ये बजरी पहुंचानी है, इसको ये पहुंचाना है, सिर्फ लिखा लुखा, और शाम को उनके पास टाइम होता है फैमिली के साथ निकलने का भी।
और ठीक है आप सारा कुछ छोड़ो, मैं उस दिन अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ रहा था, पाकिस्तान वाइज मुल्क है, कोरोना में उसने ना अपना अमेजोन स्टोरेज है उससे ज़्यादा चीज़ें भेजी है। देख लो इंडिया आपके साथ है, अमेजोन इंडिया को ज़्यादा वैल्यू देता है, लेकिन पाकिस्तान नंबर वर्ल्ड है दुनिया में जितने ज़्यादा अमेजोन से।
हम अंग्रेज़ों से बहुत इम्प्रेस है, हमें लगता है इधर इधर आके ना
और मारा ये मसला है,
इधर आके अंग्रेज आपको मुंह भी नहीं लगाते सच्ची बात, क्योंकि इधर आप आते हैं आप समझते हैं जी मेरा उधर देख, आप जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आप वहाँ से निकलो इधर पहुँच भी जाओ, आप किसी तरीके से समझो आप पहुँच गए हो, इलीगल तरीके से आप पहुँचे उधर, बाद में आपका स्टेटस क्या है, वो कहते हैं आपको पहुँचा देंगे, आप इलीगल रह रही हो उधर, फर्स्ट ऑफ ऑल नौकरी इधर जो है वो तो नौकरी आपको कौन देगा, इलीगल आप जाओगे, आप स्पेनिश के पास जाओगे वो तो पहले बुलाएगा पुलिस को, पुलिस ने क्या करना है आपको रिपोर्ट वापस भेजना है गुजरात, मोर लगानी है पासपोर्ट पे, बेटा पहुंचा
कोई भी शहर
कोई भी शहर जिधर से कारियां जिधर से आप आए हो, उसने कहना बेटा जी जाओ, अगर आप इलीगल पाकिस्तानी के पास काम करोगे वो आपको रख तो लेगा,
और आपसे अगर 8 घंटे का कहेगा वो आपसे पूरा दिन काम कराएगा,
पूरा दिन काम कराएगा, और
आपको 8 से 8 तक
इतने थोड़े पैसे देगा कि आप, और फिर बाद में आप फैमिली छोड़ के अपनी आ रहे हो, फैमिली आपकी वहाँ पे आप सुकून से, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बड़ी जमीन बड़ी जायदाद सब कुछ छोड़ के सिर्फ और यूरोप का चस्का, यूरोप जाएंगे पता नहीं क्या मिल जाएगा, आप विजिट के लिए आओ, विजिट आओ, आप बार्सिलोना देखो, इधर देखो सग्राडा फैमिलिया देखो, इतनी प्यारी प्यारी जगह है, कासा बाचियो आप देखो, क्या नाम है फिर हमारे इस्लामिक हेरिटेज ग्रानादा सेविया साइड मलागा, जहाँ से घूम देखो, तुर्की आओ, आप जो मर्जी करो, पर वर्किंग के लिए अगर आप 90s के अंदर या तो 2005-06 से पहले नहीं आए हुए तो मैं रेकमेंड नहीं करता आप इस टाइम आप ट्रैवल करके सिर्फ और सिर्फ वर्क के लिए, अगर आप पाकिस्तान सुकून से
नहीं,
अगर आप बहुत बुरी सिचुएशन में है तो आपके पास इजी दुबई है, दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा मौका है, और साथ उधर पे आप एक नज़दीक अपने मुल्क
है। नहीं दुबई नहीं, आप और भी मुल्क है, श्रीलंका तो मुश्किल है इस टाइम उसका हालात है डिफॉल्ट के बाद, लेकिन चाइना
श्रीलंका वाले मारे इधर आ रहे
हैं वही ना, लेकिन किसी टाइम ऐसा तो स्टेटस आता श्रीलंका काम करने जा रहे हैं या
श्रीलंका टूरिज्म में एक है,
थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी काफी लोग वहाँ आता बना है।
नहीं पर आप बाहर निकलने से पहले देखो कि आप अगर आप सही कमा रहे हो ना, आप अपना थ्रेश होल्ड रखो, अगर आप कमा रहे हो अगर आपका अपना घर है, अगर आप किराया शिकाया के चक्करों में नहीं हो, अपना आपका घर है फिर तो यार।
एक बंदा जिसकी मजदूरी जिनके 500 रुपए है उसके 10 बच्चे है,
नहीं वो तो फिर बेवकूफी उस बंदे की,
तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो नहीं है की ठीक है आप आना चाहते तो थोड़ी, ये नहीं मैं कहता कि यूरोप की तरफ ना हो। मैंने एक दूसरे में पढ़ रहा था या मैं पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, तो उसमें मैंने सुना एक बच्ची पाकिस्तान से बैठ के उसने बड़ी मुश्किलों से यहाँ गूगल के यूरोप के गूगल सेंट्रल
नहीं ऐसी जॉब आपको ऑफर हो तो लाजमी हो उड़ उड़ के हो। चक्कर है कि अगर आपने इधर आके जाके वालेंसिया के अंदर माल्टे फिर तो यार फिर तो वही चक्कर है ना, वो फिर लोगों को अपना दिल मजबूत रख के हो जिसने भी आना है, इधर आके रोना पड़ता है आपको क्योंकि घर से आप दूर हो
जाती है ये बात है,
घर से दूर हो आप, खाना जिसने नहीं बनाया जो सुकून से सुबह उठता है सुकून से अम्मा रोटी बना दो वो फिर खुद जब उठता है ना तो देखता है कोई बंदा बनाने वाला रोटी,
6 बजे 7 बजे उठना पड़ता है
फिर बंदे की, और बीमार पड़े हो किसी को परवाह आपकी कोई नहीं।
हमारा तो अल्लाह का शुक्र है हम पूरी फैमिली के साथ एक तरीके से
नहीं, हमारा तो एक अल्लाह का एडवांटेज है कि हमने हमें उस किस्म की नहीं करनी पड़ी मेहनत जो हमारे माँ बाप ने की है,
लेकिन ये भी है कि हमारे माँ बाप उस टाइम स्ट्रगल काफी ले
90s के एंड के अंदर जब ओलंपिक्स बार्सिलोना में हुई है तकरीबन 92 में हुई है, 92
में हुई है मेरा ख्याल, लेकिन काफी पहले आए थे मेरे पापा काफी पहले आए थे 92 से पहले, लेकिन यही है कि अगर आप यूरोप में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन ये सोच गया कि यूरोप वो चीज़ नहीं है आपको फिल्मों में दिखाई जाती है या
वो फिल्मों में अंदर तो आपको सारा स्विस वेल्प दिखाया जाता है वो बॉलीवुड का फेवरेट
नहीं
है, अगर आप मेहंदी लगाओ नहीं मेहंदी लगा के रखना है जोर सॉन्ग्स आपके यार हो गए जितने भी ये दिल वाले दुल्हनिया रहेंगे सारी
उधर आपको एक तरीके का एक बड़ा ख्वाब दिखा दे यूरोप का,
वो आपका प्यारा जो माउंटेन रेंज हो गया और सारा
वो चीज़ नहीं आप यहाँ के ये नहीं देखोगे कि ये ख्वाब दिखा चुका है इंडिया आपको, वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जो आप यहाँ देखोगे आके, लेकिन ये है कि अगर आप जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आना चाहते हो तो कोई हाथ में कोई डिप्लोमा ऐसा लेके और तगड़ा साइज हो कहते हैं पंजाबी में कि ये आके आपको कहें ठीक है आप हमारी कंपनी में आके काम करो, अगर आपके पास वो डिप्लोमा तगड़ा सा नहीं है तो मेरा असल का मशवरा है कि आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन सोच के आए कि ये वो चीज़ नहीं आपको यहाँ मिलेगी, आपको ड्यूटी मिलेगी वो भी बुरी होगी और जो काम करना पड़ेगा।
नहीं कुछ लोग समझते हैं कि जो यूरोप लोग पहुँचे हैं वो जलते हैं कि ये लोग इधर आ गए तो ये हमारे से आगे ना निकल जाए, इसलिए लोगों को आप डिस्करेज करते हैं कि ना आओ, चक्कर है कि आप रियलिटी हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आप अगर आओगे तो आपको यू हैव टू नो, इसलिए आप कह रहे हो कि आप नहीं चाहते कि एक बंदा हमारे से आगे निकले या यूरोप पहुंच जाए, यूरोप कोई ना जन्नत है यहाँ पे ना आपको इधर सब कुछ बना बनाया मिलेगा, हर जगह मेहनत चाहिए आपको, इधर यूरोप में भी आपको मेहनत चाहिए, पाकिस्तान में सब कुछ बना बनाया यार,
और यहाँ हमने एक्सपीरियंस से गया है, हमको 5 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है और पता है अगले दिन के शाम के 5 बजे तक रेस्ट नहीं मिलनी, तो फिर तो
पाकिस्तान में सुकून से बहुत लोग हैं मेहनती पाकिस्तान में भी है, पर चक्कर है कि ज्यादातर आपकी जॉब्स क्या होती हैं, अगर आपका अपना बिजनेस आप सुकून से 12 बजे उठते हो और रात 8 बजे आपको बंद कर देते हो और रात 8 बजे के बाद भी आपके पास टाइम होता है फैमिली के साथ घूम फिर सकते हो और आपका अपना बिजनेस है सुकून थे मामला वो छोड़ के आप कहते हैं कि चलो जी यूरोप चलिए
यूरोप चले यूरोप में यहाँ सुबह के गए शाम को मस्त के साथ पता नहीं कभी हुआ होगा लेकिन मेरे साथ अब्बू के साथ जम्मी के साथ मिले हुए कभी कभी 2-3 दिन हो जाते हैं बिल्कुल ही मिला जाता है, यही है कि ज़्यादा रात को लेट आए मम्मी रोटी बना दी खा ली हमने खा के सो गए या ये है कि सुबह उठे मम्मा ने पता टप वो बनाया है लंच बॉक्स लेके कहाँ पे चलेगी अगले दिन तक पता नहीं आना है या उससे अगले दिन या फ़ोन पे बात है ज़्यादा ऐसा व्हाट्सएप पे आजकल जो बात होती है कभी कभी तो वही है गर्मियों में होता है चलो कि हॉलीडेज कहीं निकल गए इधर उधर।
पाकिस्तान में तो यार आधे लोग एक यूरोप में जो लोग आते हैं ना फिर क्या होता है आधे लोग उसके ऊपर चल रहे हैं और किसी से पूछो कि किसी कोई भाई रहा उसके भाई से पूछो कि तू की करना मेरा भरा भाग रहा
है,
मीनिंग कि ये उसकी नौकरी है, कि उसका भाई भाग रहा है,
ये बड़ी है,
ये उसकी नौकरी है कि उसी के ऊपर वो चल रहा है, कि उसको पता है कि महीने का राशन आ जाना है, हमने खुद तो हम हड़राम ही करते हैं, सबको बाकी पाकिस्तान भी हड़राम किया कि उधर भी उसी पे चलने लगे हैं कि एक बंदा भाई रहा
है। ये बात काफी दफा सुन रही बात आपकी, ये बात काफी दफा सुनने को मिली है, मेरा भाई बाहर है या मेरा
वो ना, एक भाई भी उस बेचारे जो बाहर भी है उसके ऊपर इतना आपने प्रेशर डाला है,
उस गरीब के ऊपर जो बाहर आया उसके ऊपर आपने उसकी जो शादियां जो ठीक है मानने, लेकिन उसने आपके घर का खर्चा ही भाई, बड़े भाई छोटे भाई को भी उसने खिलाने के, छोटा वो
बिल्कुल कुछ नहीं काम कर रहा, वो क्या करता है गाने शाने सुन रहा है या कई दोस्तों के साथ बाहर निकल गया, मीनिंग कि आपने उनको
और उसने इतनी खापी डाली होती है, मुझे भी बाहर बुलाओ
मीनिंग कि भाई कोई इसीलिए तो एक्सप्लेनर एक आपको देना कि जिन लोगों का ये माइंड सेट है वो उनको सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हो तो नो नीड टू कम हियर, आप पाकिस्तान में बहुत सुकून से आप जिंदगी अपनी गुजार सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, आपको जो कोई हाफ दिखाता है ट्रैवल एजेंट, अगर आप ज्यादातर तो आप किसी पर यकीन ना करो, कोई आपको बहुत अगर कहे जी पर उसको कहो मैं इधर आके स्टेटस क्या मेरा होगा, अगर आपको विजिट वीजे पे भेज रहा है इलीगल तौर पे फिर तो आप
आपका स्टेटस तो फिर
आपका स्टेटस इधर आके कुछ नहीं होगा, आप इधर आओगे आपको कहेगा जी आपको पहुंचा देगा, पहुंचा दिया उसने आपको इधर,
उसका काम है
उसने पहुंचा दिया किस तरीके से, बाद में आपने काम क्या करना है, बाद में जिंदगी कैसे इधर जीनी है बहुत डिफिकल्ट है।
नहीं मैं आपको एक केस बताऊं, जब मैं इस कोरोना की बात है मेरे ख्याल है मेडिकल में, जब मैं क्लोथ में था मैं अस्पताल में, तो एक बंदा इमिग्रेंट आया था पाकिस्तानी, तो उसने कार्ड बनवाना था अपना, उसके पास बिल्कुल पेपर नहीं थे और लग रहा था जिसके उसकी उलिये से लग रहा था वो गाँव का बंदा है, पता लग रहा था उसे बोलने से, और उस बंदे का मसला ये था कि उसके पास ना पेपर थे ना कुछ, आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री है पेपर वगैरह नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अब उसको रजिस्टर करने के लिए उसको ना उसको किसी की समझ आए, क्योंकि वो खाली पंजाबी बोलता था, ना उसको किसी की समझ आए ना वो अपने आप को समझा सके, उससे एक दोस्त साथ आया था पाकिस्तानी, उसको भी स्पेनिश आती थी गरीब को बस गुजारे की क्रिकेट कह लो, तो मुझे उन्होंने क्लोथ से बुला के समर्थी पास ही आया उधर क्लोथ के बड़े अस्पताल है
ये बार्सिलोना के एरिया की बात हम कर
जी, तो समर्थी तक उन्होंने मुझे उनको बुलाना पड़ा कि इसको आके, उन्होंने मेरे 10 दफ़ा पूछा कि तू जबान बोल सकता है नहीं बोल सकता, मैं कहा अभी तो बोल सकता हूँ, मैं अंकल के पास पूछा मैं अंकल आप आए क्यों, बस एजेंट के थ्रू से आया, मैं अंकल आप कर रहे हो यानी बस एक दोस्त के घर में मैं बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब ये 50 लाख लगा के आगे किसी के घर बैठ के छुप के रहना,
ये बंदा भी आपको कब तक बर्दाश्त करेगा यार,
वो एक दिन नहीं दो नहीं चल ज़्यादा मीना कर लेगा, फिर
आपको लात मारेगा भाई अपना ढूंढ,
यही मसला है
इधर चक्कर है कि आप बाहर निकलोगे ढूंढने के लिए तो आपको उधर भी लोग क्या नाम है करेंगे आपको चूना लगाएंगे, चक्कर है कि आप अगर पाकिस्तान में वही बैंड में वही एक खुलासा बात करते हो कि पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हो तो बी हैप्पी यार अपनी फैमिली के साथ इधर दिन गुजारो, बाद में आप जाते हो कई लोग तो यार जाते हैं वापिस ताबूतों के अंदर, आपको क्या होता है कफिन आपका पाकिस्तान पहुंचता,
ये भी काफी केस हुए हैं कि कोई बंदा यहाँ आया बार्सिलोना में कह लिया किधर भी बार्सिलोना पे, मुझे तो काफ़ी दफ़ा आपकी मेरे होश मारे सुनने में आ रहा है कि उसकी अम्मी फौत हो गई उसका अबू फौत हो गया और जा नहीं सका
जी, ये बल्कि हमारे बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके कि जब हमारी नाना दादी फौत हुई थी तो जाने का एक बड़ा आपको एक मसला
पड़ता है एक तरीके का, वापस आप जा रहे
वो ना कि अगर आपके माँ बाप घर आपके पास मौजूद है उनकी हिम्मत करो यार, वेल सेटल्ड आप पाकिस्तान में हो तो लोग अपनी लालच के अंदर ना लालच एक होती है कि चलो हमारे साल का कमा रहे हैं ना करोड़, तो उधर जाके हम 5 करोड़ कमाएंगे, तो 5 करोड़ क्या कमाना इधर आगे आपको अपनी सारी
जिंदगी और भी मुश्किल से कमाना रहेगा,
प्लीज यूरोप इज डिफिकल्ट
या वेरी डिफिकल्ट, और लोगों को ये बस एक तरीके का शोर देने की कोशिश है कि प्लीज अगर आप बार्सिलोना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन कुछ सोच के आए कि क्या करना है आपने और क्यों करना है और क्यों आ रहे हो, सबसे पहले तो ये है अगर आप यहाँ नहीं आ सकते या आपने 2 नंबर से आना तो प्लीज़ ना आइए थी, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार 2 नंबर आने का, तो असद अगर आप एग्री हो तो अपने स्पेशल सेगमेंट की तरफ थोड़ा सा
चले, आज स्पेशल सेगमेंट क्योंकि हमारे शो का नाम है शाम की चाय, तो शाम की चाय जब रात में ज़रा जा रही है
तो हम
जो रात के ज़रा कोई पुरशरारियत उसके अंदर हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, अब जो लॉन्ग मार्च हो रहा है वो जा रहा है जी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद का ज़रा हम जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद की जो ज़रा पुरसरार जगह जो है जो वहाँ के अंदर ज़रा जो एक सनसनी खेज जगह जहाँ पे आप जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हमने थोड़ी कंपाइलेशन थोड़ी की है इधर, जरा सा एक स्पाइसी टच देने के लिए ज़रा। तो सबसे पहले जी हम जिक्र करेंगे आप जिधर से आते हैं इधर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो भाई जान
शुरू करने से आप सर सॉरी वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, क्योंकि जो पिछला एयरपोर्ट था उसमें उसमें आप एक तरीके का उतरते लगता था आपकी सीट।
ब्यूटीफुल तो है पर आपको जब पता लगेगा उधर क्या है तो आप बहुत ब्यूटीफुल,
वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन
आपको ब्यूटीफुल चुड़ैलें मिलेंगी।
लेकिन एक तरीके का आप जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जो रावलपिंडी में एयरपोर्ट था उधर से लगता है सब लारी अड्डे पे आ गए आप, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा वहाँ लोग आपके सामने बिस्किट वगैरह ऐसे वैगनों में ही लेके आ रहे होते, तो बंदे को
यार किसी गरीब की मौत ही कर दे तू बिस्किट पे ले ले ले।
यार बंदा एक तरीके का इतना थका आता है 8-9 घंटे बाद तो आप क्या बिस्किट
क्या करे तेरे लिए
वो छोटी सी क्या
लेके,
लेकिन वो फील नहीं आती कि आप आए। और जो इस एयरपोर्ट पर इतना ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है और एक तरीके का मजा है, दूसरा वो दूसरा टेस्ट आता है
जी आपको हम जरा मिस्टीरियस टेस्ट देते हैं इस जगह का।
चलिए
ये कंस्ट्रक्टेड जो हमने थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च किया, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमारी कंपाइलेशन 5 मोस्ट हॉन्टेड जगहों की है जो इस्लामाबाद की है। लॉन्ग मार्क के साथ हमने जरा रिलेट करने की कोशिश की, लोग उधर जा रहे हैं तो पता हो जा करेंगे, मैं भी आप लोग भी उनमें लॉन्ग मार्च आजादी मार्च कर रहे हैं, आजादी मार्च आप जाके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाए तो आपको पता चले यहाँ तो कोई छोटे बच्चे घूम रहे हैं इधर रात के वक्त, तो आप जाके किसी बच्चे के साथ क्रिकेट ना खेलने लग जाए वो बच्चा के आउट तो फिर आपकी चीख निकल जाए तो जी इसने मुझे ही बोल्ड कर दिया क्लीन बोल्ड। तो ये सबसे पहले तो ये एयरपोर्ट बिल्ड है, एक कंस्ट्रक्टेड किया इसको एक पुराने ग्रेवयार्ड के ऊपर, पुराना कब्रिस्तान, तो इस वजह से आप यकीन करें ना करें पर हम ऐसा आपको क्यूरियोसिटी एक चीज़ बता रहे हैं कि जो स्टाफ मेंबर है उधर का उसने काफ़ी उनके साथ वाकयात हो चुके हैं जिसके अंदर ड्राउनी आवाज़ें रात के वक्त, रात के वक्त ही तकरीबन सारी फ्लाइट लैंड मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो इधर इंटरनेशनल है रात के वक्त ही लैंड करती हैं।
नहीं जो दुबई से जाती है मैंने
जी, पर जो पैसेंजर भी उस टाइम गए हैं मिड नाइट आफ्टर 1 o'clock बिटवीन 1-3 उन्होंने देखा रात को ड्राउनी आवाज़ें, जब अपेरेंटली बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स का नहीं होता वहाँ पे आना जाना, और रनवे के ऊपर भाई लोग बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं आप जाके खेलोगे उनके साथ, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे रात के वक्त, और आप जाके देखते हो यार ये कौन सा क्रिकेट,
रनवे पे क्रिकेट खेल रहे हैं
ये छोटे बच्चे, शैडो किस्म के बच्चे ना, शैडो के ये सिलुएट आपको नजर आता है बच्चों का।
असद आपसे एक छोटा सवाल करना, आप पायलट एक तरीके की इंजीनियरिंग कर रहे हो जहाज़ों की, तो आप अगर रात पे या बार्सिलोना रनवे पे आपको इस तरह का कोई वाकया हो रहा है तो आपके क्या
नहीं इधर के ना थोड़े बहुत जो गोस्ट भी हैं ना जो क्या नाम है जिन भूत भी हैं वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड है वो रनवे पे खेलते हैं, वो खेलते हैं जाकर रात के वक्त जब आपके स्टेडियम बंद होते हैं रात के वक्त आपस में बोरी होती है बार्सिलोना के मरे हुए खिलाड़ियों की आपस में, इंटर मिलान और बार्सिलोना के पुराने मरे हुए खिलाड़ियों की आपस में,
जरा गोरे जरा
सोफिस्टिकेटेड, हमारे बच्चे नहीं हर जगह पहुंच जाते हमारे भूत बच्चे भी पहुंच जाते खेलने, तो ये भाई एक है चीज़ आपको रनवे के अंदर नजर आता जाके बच्चे वहाँ पे, और काफ़ी लोगों का हमने जो थोड़ी बहुत रिसर्च किया काफ़ी लोग भाई उधर बेहोश भी हुए हैं रात को, उन्होंने देखा ये बच्चे खेलते हुए तो पास पूस गए तो बच्चों ने कोई मुंह अजीब सा खोला या चीख मारी उसी नहीं क्या रात को क्या हो गया चलो जैसे नहीं हमारे अंकल होते रात को हम खेल रहे होते क्रिकेट कहते हैं मैंने भी एक गेंद कराओ मैं बच्चों को खा गया एक गेंद कराओ बच्चों ने कहा भाई जान साड़ी गेम चल रही है उसी अंदर कराओ। फिर अगली हमारी जी सेकेंड एक जगह जिक्र करें शाह अल्लाह दीता केव्स, मैं पर्सनली नहीं गया इधर, पता नहीं आपको इनका इल्म है या नहीं, नहीं आप इस्लामाबाद के, इधर भी बताया जाता है कि 700 साल पुरानी डिस्कवरी है इस केव की, मीनिंग के पुराने दरख्त पुरानी क्या नाम है एम्बियंस सारा वहाँ का।
वैसे आप रात के वक्त जो साइड से आए मरी वाली साइड से रात
बहुत डर लगता,
बंदा कहते हैं गाड़ी वाले का ही हौसला होता है, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बंदा कभी जाए था देखने के लिए शाम उस मरी वाली साइड पर वापसी पर आ गए थोड़ा सा बंदा लेट हो जाए लेट का 8-9 बज जाए तो बंदे को वापसी पर डर लगता है, एक तो वहाँ की ट्रैफिक का एक्सीडेंट और एक जिस तरह के वहाँ के लात पैदा हो रहे थे रात के वक्त।
नहीं ये जो केव्स है इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि آپ اگر اس کے پاس جا کے رات کے وقت تو آپ کو آوازیں آئیں گی لوگوں کی, وہ باتیں کر رہا ہے, میننگ کہ آپ کے بارے میں کوئی لگا ہوا ہے آپس میں اس قسم کی نا, کہ آپ کو ایسا بات کرنے کی نظر آئے گی کوئی آپس میں نا ہلکی سی آواز کے اندر آپس میں لگے ہوئے ہیں لوگ,
ہلکی سی گفتگو
ہاں کرنے لگے ہیں, جیسے وسپر نہیں ہوتا, وسپر انگلش کا ورڈ فٹ ان ہوتا ہے, تو میں بھی آپ سمجھو کہ میں بھی کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے یا کچھ, ادھر نہیں آپ نے جانا ہے. صبح کے وقت آپ ان جس مرضی جگہ جاؤ, صبح کے وقت بچے نظر آئے تو ان کو کہو کہ نہ کھیلے فٹ بال ادھر, کیا نام پر رات میں نظر آئے کسی کو نہیں منع کرنا آپ نے, بچے تو کھیلو جتنا کھیلنا ہے. اور یہ کیوز بھی, یہ پورا ایک پارک ہے, ہل پارک اس کا بتایا گیا کہ یہ بھی ہانٹیڈ ایک جگہ ہے, یہ 700 سال پرانی بھائی ہانٹیڈ جگہ ہے. تیسری ہم آپ ذکر کریں گے ایک لیک, یہ جگہ تو آپ کو پتا ہے شکر پڑیاں, آپ کی پیدائشی کیا نام ہے شہر ہے آپ کا, تو ادھر جی ادھر ایک انٹرسٹنگ تھا جس کو ملتا ہے کہ ادھر مرڈرز ہوئے ہیں لوگوں کے گلے کاٹے ہوئے ہیں, نوری نت مولا جان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ادھر جو لیک ہے لوٹس لیک, تو اس کے شکر پڑیاں, اس کا جی جو بیک گراؤنڈ آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو لوگوں کے مرڈر ہوئے ہیں ان کے جو باڈیز ہیں وہ لیک کے آس پاس میننگ کے پھینک جاتے تھے لوگ, اور میننگ کہ اگر آپ ایک بندے کو ایز اے پروپر تھرو چینل وہ اگر نہیں مرتا تو اٹس اے بلیف کہ وہ پھر بندہ میننگ کہ آپ کو اس کو ایک چھوڑ جاتی ہے اس کیفیت کے اندر کہ نہ وہ پھر کیا نام ہے جن ہو گیا جو ہو گیا پھر وہ بعد میں اس جگہ کو ہونٹ کرتے ہیں, میننگ کہ اس جگہ ایک نگیٹیویٹی اور پوزیٹیویٹی کا ایک بڑا عمل دخل ہے. پیرانارمل کے اندر بھی آپ امیرکن ریسرچ سینٹرز ہو گئے, یہ سارے جو سب چیزوں پہ سوچتے ہیں,
اس طرح اگر بریک دینا چاہیے ایسا کچھ بارے میں زیادہ پتا ہے کیونکہ ایسا
میں
اس نے زیادہ ڈاکومنٹری وغیرہ دیکھی ہے, اس کو زیادہ انفارمیشن زیادہ اسٹڈیز کے اوپر کی ہوئی ہے,
اس میں اپنا ہر کسی کا بلیو ہوتا ہے, پر میننگ کہ برائی اور اچھائی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ماننا پڑے گا, اور اس جہاں پہ برے کام ہوئے ہیں ادھر پھر برائی ایک راج کرتی ہے رات کے وقت. تو ادھر بھائی اسلام آباد کلچرل سینٹر ادھر بننے لگا تھا پر ادھر نہیں بن سکا, میننگ کہ بےچارے مزدور بھی رات کو ڈر گئے ہوں گے ادھر, اور رات کو یہ ایک آپ کو دیتا بھی ہے اس قسم کا وائب جیسے کہ ڈراؤنی جگہ ہو.
گڈ گڈ.
پھر بھائی ادھر بدھسٹ گریو یارڈ, میننگ کہ بدھ مت جو ہمارا ایک پاکستان میں بھی اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جاتا, پر ادھر ایک ان کا قبرستان ہے بدھ مت جو مانتے ہیں,
لیکن کافی میں نے سنا تھا پچھلے دنوں میں گنگنگ کی بات ہے میرا خیال ہے یہ کافی بدھسٹ آئے تھے پاکستان.
جی وہ تو وزٹ کرنے آئے ٹوریزم کے اوپر,
لیکن ایک طریقے کا ان کا وہاں کوئی
پاکستان کیونکہ یار آپ کا گندارا سوسائٹی آپ کی جو گندارا سویلائزیشن وہ آپ کی پورانی چلتی جا رہی ہے, آپ کا افغانستان ہو گیا افغانستان پاکستان اور تھوڑا بہت انڈیا اور پھر اوپر نیپال وغیرہ, یہ سارا ایریا ایک بدھسٹ کا ایک
بدھسٹ ایریا ہے.
جی جی یہاں پہ سیکٹر F7 اسلام آباد, ادھر جو ہے قبرستان یہاں پہ آوازیں نظر آتی ہیں, اور یہاں پہ جو میننگ کہ تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہے باقی جگہوں جو ہم نے ذکر کیا ہے, یہاں پہ رونے کی آوازیں رات کو آتی ہیں جیسے کوئی افسردہ رو رہا ہے بندہ, تو گارڈس وغیرہ جو ہیں وہ تو اس پہ بالکل وہ کہتے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے,
لیکن ایک طریقے کا سوچو اگر آپ وہاں روز جاتے ہو اور آپ کو روز طرح کی آوازیں آتی ہیں آپ کو کیا چیز مجبور کر رہے ہیں وہاں کام کرنے کے لیے,
یہی تو یار چکر ذکر کر رہے تھے, اگر آپ کو یہی نوکری پاکستان میں ملی ہے پھر آپ ادھر آ جاؤ آپ بھاگتے ہیں آج,
اور یہاں اس طرح کی نوکریاں کافی کامن ہے بندوں کو اس طرح کی نوکریاں ملتی ہیں
کافی, اب آپ یہاں کے کسی گریو یارڈ میں جاؤ جو جن کو ہم انڈر ٹیکر جو ایک نوکری انڈر ٹیکر اس کو کہتے ہیں جو قبر میں اتارتے ہیں لوگ
WWE والا
دوسرا انڈر ٹیکر جو قبر کے اندر جو اتارتا ہے بندہ وہ یہاں پہ ایک نوکری ہے میننگ کہ وہ پر ان کا ایک اگر مین چیز اگر آپ کسی چیز پہ بلیو کرو گے نا تو وہ پھر
کہنے کا مطلب ہے یہاں مزے سے منجی نہیں لے کے آتے نہیں تو ایک پراپر کمپنی دے رہا
جی آپ کو, اللہ اللہ اپنے ملک میں بندے کو موت دے یار, ادھر تو بہت
ایکسپینسیو ہے, اور
ایکسپینسیو کے علاوہ بھی ایک بڑا ملک سے باہر یار اپنی مٹی کے اندر بندہ دفن ہو
نہیں یہ بات ہے, یہ اور یہ ہے ہر پاکستانی کا یہاں بلیو ہے کہ ایک طریقے کا اپنی مٹی کے اندر ہی
جی یا نہیں ہم جو یار پاکستان سے باہر ہوں دور ہوں نزدیک اپنے ملک کی مٹی کے ساتھ. تو
چلو
بیک ٹو یور ٹاپک آتے ہیں جی, جو آگے پیچھے کے لوگ رہنے والے بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آگے پیچھے چلے جائیں کوئی بندہ ہوتا نہیں پر لگ رہا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ ادھر سے گزر رہے ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی فالو آپ کی ایک نظر سے نا ود دا گیز آپ کو فالو کر رہا ہے, دیکھتے پیچھے کوئی بندہ نہیں,
पर
मेरे साथ भी एक दफ़ा रात को काफ़ी लेट आया था, तो लगता है बंदे को, बंदा दो तीन दफ़ा पीछे होता है और बिल्कुल पीछे नहीं। और मेरा जिस इलाके में मैं रहा है ना, उस इलाके में काफ़ी जंगल वगैरह आस पास है, पीछे में रात ही में था, दो तीन का वक्त था। मेरा एक दोस्त गाड़ी में मुझे आस पास छोड़ गया, तो ऊपर छोड़ के गया था थोड़ा सा यहाँ से कोलिना के, तो उतरते उतरते यहाँ लग रहा था कोई पीछे देख रहा है, मैं पीछे की तरफ देखूँ ना कोई आंखों जब, और लग रहा था बिल्कुल ऐसे अपने सारे पीछे हैं, तो डर काफ़ी उस टाइम लगा। लेकिन इस टाइम ये था कि कलमा पढ़ के सीधे आए की तरफ,
बस आपको आयतल कुर्सी आती हो तो
वही वही।
फिर जी आपकी हम फिफ्थ प्लेस, आपकी फेवरेट जगह लोक विरसा, जिधर वैसी रात को डर लगे तो गरीब उन्होंने चक चीज़ें बना के रखी हैं। ये बहुत मशहूर मशहूर जमाना जगह, इधर तो मैं भी गया हूँ, मीनिंग के बहुत उधर की एक जगह जैसे मोनूमेंट हो गया वैसे, कि आप जाओ तो मिस नहीं करते। पर इसकी ये साइड मुझे नहीं पता थी, जब मैंने सर्च किया तो पता लगा, मैंने कि इसके अंदर सबसे पहले तो इन्होंने मुजस्मे बना के रखे हुए हैं ना, वे वैक्स की हैं कुछ कुछ आपको लगेंगे, कुछ प्लास्टिक के बना के रखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को, अपना पेशावर कल्चर हो गया, अपना पठान कल्चर हो गया, सिंधी कल्चर, पंजाबी सरायकी, अपना गिलगित हो गया, शानी कल्चर। पर फिर ये जो चक्कर है कि इधर जो रात के वक्त वैसे अगर आप निकल जाओ और अंधेरा गुप छाया हो, ये आपको देखे तो आप ऐसे डरोगे, ये जगह रात के वक्त हॉरर मूवी एक आपको एक पूरा देगी उसका फील। तो लोगों ने यहाँ पे जी रात को देखे हैं शेडो, और वो भी इससे बाहर, मीनिंग के एक कॉम्प्लेक्स से बाहर, जब आप रोड पे जा रहे होते हो सबसे पहले आप एंटर होने लगो तो आपको एक नज़र आएगी बैल तो वो भी इन्होंने बना के रखी है उसकी प्लास्टिक की, तो आप उस पर ही देखोगे यार है कि चक्कर इधर क्या है, आप गांव में आ गए हो तो आप करीब से गुजरोगे आपको नज़र आएंगे जैसे क्या नाम है शेडोज़। और रात को जो वहाँ लोग करीब रेजिडेंट्स हैं उनको भी रोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे आप पे कोई जुल्म कर रहा हो, कोई आपको मार रहा हो। तो पर यह चक्कर है कि हिस्टोरिकल साइड एक अच्छी है, पर यह है कि बी केयरफुल जो जा रहे हैं आज़ादी मार्च कर रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च के लिए के साथ जा रहे हैं, अगर आप उधर जाओ और इन जगहों में आपको जाना पड़े तो अपना ख्याल रखें, और कोशिश करता है क्या नाम है अपनी इस तरह के मुताबिक कोई जगह तलाश कर लें, इधर इन जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि रात को मैं भी आपके साथ भी मिस हैफ हो जाए।
तो आज का सेगमेंट असर काफ़ी
इंटरेस्टिंग, अगर आपको पसंद आया तो हम एक पूरा एक पे सेगमेंट कर सकते हैं, एक
क्यों नहीं
अपने एंटिटीज ये एग्जिस्ट कैसे करती हैं, खाना पीना इनका ये वो सब,
ये हम मैं व्यूअर्स पे छोड़ते हैं उनको
जी, आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा
लगा। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही असद, अगर आप कुछ हैंड पे कुछ
जी, बस मैं हम अरशद शरीफ को ये डेडिकेट करना चाहेंगे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और आइंदा कोई ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में ना हो, हम करेंगे। और लास्टली मैं भी हमारा पाकिस्तान पहुंचे सेमीफाइनल में, अल्लाह करे इसी तरीके से बारिश हो जाए,
पॉडकास्ट तक कोई ना कोई नया पाकिस्तान,
वो तब भी हो सकता है कोई तूफान आ जाए, जलजला आ जाए,
अच्छा की बात लगी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान कोशिश करेंगे, दुआएं हैं कि पहुंच जाए हर दफा,
कुछ ना कुछ होगा, पर कोई नहीं यार, हमें अपनी तरफ से इम्प्रूव करना चाहिए
जमीन
में आसमां देखा बदलता ये जहां देखा, कभी जो बोलते थे खूब उनको बेजुबान देखा, ये अरशद शरीफ के लिए एक समय डेडिकेट की शेर है हमारा।
और हमारा जो पॉडकास्ट का प्रोग्राम है, हम कोशिश करेंगे 15 दिन बाद जब हमको थोड़ा सा टाइम मिला कि असद और मेरी जो मेरी यूनिवर्सिटी के साथ और असद अपने वर्क के साथ ज़रा नहीं और टाइम दे सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे 15 दिन बाद असद आपका क्या
कहना है, एवरी 15 डेज
ट्राई करेंगे, अवल तो कोशिश है हर वीक का करें, लेकिन वीक का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, यही है कि थोड़ा टाइम का मसला है और ज़रा ये है, लेकिन कोशिश करेंगे 50 डेज मैक्सिमम हम आपको दूसरा पॉडकास्ट डाल के दें। और आज के लिए फ़िलहाल यही, शाम की चाय के साथ,
और मेरी चाय तकरीबन खत्म होने लगी है,
पूरी खत्म हो चुकी है
हमने शाम की चाय बिल्कुल आपके साथ ही पी है।
और असद के साथ, और असद का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए प्रोग्राम में।
भाई जब आप बुलाओगे हमारे,
उम्मीद है अगले प्रोग्राम हमारे साथ ही आएंगे।